ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरो श्रीजगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् गुरुभगवान् श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 स्वामी प्रेमपुर जी महाराज को प्रणाम। पवित्र श्री चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित ईश्वर को भी प्रणाम। नमो नारायण। छठे अध्याय के 14 और 15 मंत्र को पढ़ेंगे। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनसंयम्यमच्चित्त युक्त आसीतमत्परः यंजनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं देशश्चानवलोकयन् प्रसन्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीतमत्परः युञ्जनेवं सदात्मानम् योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति हरिः ओम। ये जो हमारा मस्तिष्क है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। काफी लोगों को बोलते हैं मुझे चक्कर आते हैं। क्यों चक्कर आते हैं भाई? वो वर्टिगो हो गया है। वर्टिगो क्यों होता है? काफी सारे रीजन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से भी होता है। ये जो हमारा सिर है वो जो बाहर जैसे दिखता है वो बाहर एक दिखावे उसके अंदर में एक खाली जगह है, उसको कैविटी कहते हैं। जैसे कि ये कमरा है, बीच में खाली है, उसमें हम लोग आप लोग सब बैठे हुए हैं और कैविटी में थोड़ा पानी भरा हुआ है। वो जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर में छोटा दिमाग बड़ा दिमाग तैरते हैं। जैसे कि आप बहुत बड़ा कटोरा में सांभर ले लो, उसके बीच में दो इडली तैरती है, ऐसे ये सेरिब्रम सेरिबेलम तैरते हैं। ये सेरिब्रम सेरिबेलम के अंदर भी एक पानी है, सेरिब्रल फ्लूइड कहते हैं। ये जो है वो हमारी ये पूरी रीढ़ की हड्डी है, उसमें नीचे तक चलता है। रीढ़ की हड्डी जहां नीचे है वो जैसे कि हमारे अंग्रेजी आठ होता है, ऐसे वर्टेब्रा एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर बैठे हैं। उनके बीच में कोई नली नहीं है, किंतु ट्यूब भी नहीं है, किंतु वो जो वर्टेब्राज हैं उनके बीच में एक ऐसी जगह बनी हुई है, इट फॉर्म्स ए कैनल। तो जो सेरेब्रल फ्लूइड है उसमें फ्लूइड करता है, कहां तक नीचे आने के बाद में एक पांच ये छोटा बच्चा का जो चड्डी होता है ना, ऐसे आकार में छोटा सा सैक्रम बोलते हैं, उसको सैक्रल कहते हैं, सैक्रम प्लेक्सस कहते हैं, प्लेक्सस है नाड़ी जाल, वो ऐसा होता है। उसके पीछे नीचे खाली जगह है, उसमें बड़ा तंत्र है। तो जैसे कि ये शरीर है, ये शरीर नाम के नगर को चलाने के लिए बड़ा पावर हाउस यहां है, तो छोटा पावर हाउस कमर के नीचे पीछे है। अभी जैसे कि कोई आदमी मरेगा तो मरने के साथ में एकदम से सीधा नहीं मरता है, जो धीरे धीरे मरने वाला है वो पहले हाथ पांव है वो पहले मरते हैं, मलमूत्र के स्थान भी खोटे होते हैं, फिर जाकर के ब्रेन डेड होता है, फिर जाकर के हार्ट। एक बार हार्ट बंद हो गया तो सब एक साथ बंद हो जाएगा, मेन स्विच है। तो ये जो क्या कहते हैं कृष्ण, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम। कल आपसे कहा था यदि रास्ता एकदम सीधा हो तो उसमें जो कार चलेगी जिस स्पीड से, और जिगजैग रास्ता हो तो उसमें उस गति से नहीं जाएगी। कल ये भी कहा कि बुद्ध भगवान कैसे बैठते हैं, भगवान महावीर कैसे बैठते हैं, भगवान शिव कैसे बैठते हैं, शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। वो शांत बैठते हैं पद्मासन में, सिद्धासन में, स्वस्तिक आसन में, कमर को पूरा सीधा रखते हैं, समम सीधा, शिरो सिर, ग्रीवा ग्रीवा काया, मस्तिष्क गला और सीना एक लाइन में सीधा रखो। क्या होता क्या है देखिए, जब हमने चौड़े पांव कर लेते हैं इसे घुटने बैठने के लिए, वो आकार ऐसे होता है शरीर का, जैसे पिरामिड है, ये पिरामिड है, इसी आकार में रहते हैं, पिरामिड है युगों से हजारों साल से। अगर हम ऐसे बैठने का अभ्यास करेंगे, सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, स्वस्तिकासन में, तो अधिक देर तक अच्छे से बैठ सकते हैं स्थिर। क्या कहा है, स्थिर बैठना है भाई, धारयन अचलम स्थिर, स्थिर बैठना है। अगर जब इन आसनों में बैठ जाएंगे अभ्यास करके तो शरीर स्थिर हो जाएगा, स्थिर जरूरी बात है। तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, सेरेब्रल फ्लूइड जो है, जो छोटे दिमाग के बड़े दिमाग के अंदर होता है, वो इन नाली के बीच में चलता है। ऐसे बैठ के अभ्यास करने पर प्रारंभ में कल आपसे कहा प्रणव का उच्चारण करें, हो क्या होगा। आपसे कल कहा कि साधारण रूप से हम जो सांस लेते हैं एक मिनट में 15 सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो हर सांस है वो 4 सेकंड की होती है। ओंकार करने पर हर ओंकार 15 सेकंड का होता है। जब ओंकार करते हैं तो होता क्या है, खून नीचे से ऊपर आता है। सबसे पहले अब सादी पालथी बांट करके बैठने का अभ्यास करो, नहीं बैठ सकते तो थोड़ा बैठने के स्थान में थोड़ा तकिया रख लो, हिप्स को थोड़ा, नितंब को थोड़ा ऊपर कर लो, घुटने नीचे हो जाएंगे, कमर फिर सीधी ही रहेगी, दीर्घ काल तक आसानी से बैठ सकते हो। ऐसे घुटने मोड़ लिए तो क्या होगा, खून पेट को अधिक मिलेगा। पेट को अधिक मिलने से आपकी जो अंतःस्राव ग्रंथियां हैं, जिसको लीवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, स्प्लीन है, एड्रिनल है, महिलाओं को ओवरीज है, यूट्रस है, पुरुष लोगों को एक प्रोस्टेट भी है, ये तमाम को विशेष मात्रा में रक्त की प्राप्ति होती है। पाचन क्रिया अच्छी होती है, इसलिए अपच नहीं होता है, गैस नहीं होता है, कब्ज नहीं होता है, घुटने नहीं दर्द करते, कमर नहीं दर्द करते, हार्ट को बिना तकलीफ के पंप करने के लिए सुविधा रहती है ब्लड को ऊपर की ओर। जो इंसान ज्यादा खड़ा ही रहता है, खड़ा रहता है, खून नीचे की ओर जाता है, ऊपर नहीं जाता है। चुकड़ी मार के बैठने से खून है वो अधिक मात्रा में कंपेरेटिवली थोड़ा सिर को ज्यादा मिलता है। सिर को खून मिलने से सबसे क्या होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, मन शांत होता है, गुस्सा नहीं होता है। गुस्सा है डाउन हो जाएगा, यू विल नॉट लूज अ टेम्पर, यू विल बी ऑलवेज चेयरफुल। सहन शक्ति बढ़ती है हमारी। जीवन सब जगह में ये फूल के माला पहनाने वाला नहीं होता है, वो जूते फेंकने वाला भी होता है। दोनों अवस्था में इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट और हाल में अल मस्त सच्चिदानंद हूं, कैवल्य केवल कूटस्थ आनंद हूं। ये अवस्था रोज नियम से ऐसा करके बैठना, ओमकार प्रणव का दीर्घ उच्चारण करना, 5 मिनट कम से कम, लंच के पहले एक बार और कर लो, शाम को करो, रात में कर लो, इनमें 4-5 दफे कर लो, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट काफी होगी, 20 मिनट काफी है, 6 महीने के बाद में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो कृष्ण हमें बहुत स्पष्ट करते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम, बड़ा वैज्ञानिक है, शुद्ध विज्ञान है इसमें, कि आपको मस्तक गला सीना एक लाइन में सीधा क्यों रखना है। ग्रेविटी जो है पृथ्वी की हमें नीचे नहीं खींचेगी, फिर ना नीचे चौड़ा हो गया है शरीर, ये यहां एक गमला रखा है, नीचे छोटा भाग है, ऊपर चौड़ा भाग है, उल्टा कर दे, उल्टा कर दे तो और भी सुविधा हो जाएगी, चौड़ा भाग नीचे रहेगा। पहाड़ है ऊपर ऐसे नहीं होता है, पहाड़ नीचे चौड़ा होता है, ऊपर छोटी होती है, इसलिए दीर्घकाल पर्यंत रहता है। पिरामिड्स भी है, नोक में नहीं खड़े हैं ना, नीचे चौड़े हैं ऊपर सिकुड़े हैं, तो नीचे चौड़ा जो भाग हो जाएगा ऊपर सिकुड़ा हो जाएगा। तो ये ग्रेविटी है, उसके फोर्स आपको सहाय करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी ऊर्जा को नहीं ले लेंगे। इन तमाम बात का क्या है, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, नाक के ऊपर देखना है, आंखों को खुला रख के नहीं बैठना है। खुला रखने से दुनिया सारी दिखती है बाहर की, बाहर की दुनिया को हम पहले देख चुके हैं, बाहर की दुनिया है वो ही हमें सबसे अधिक दुख देने वाली है, क्योंकि आंख ही दुख का प्रवेश द्वार है। क्यों कैसे है भाई, कहे कि एक बहुत बड़े महात्मा थे, बड़े पवित्र संत, उन्होंने एक शाम अपने बेटे से कहा, बेटा क्या चेले से, बेटा कल मध्यान्ह 12:39 पर एक बड़ा पवित्र काल होता है, तो उसमें मैं ये शरीर छोड़ दूंगा। गुरुजी क्यों, मेरा समय पूरा हो गया है, मैं अपनी समझदारी से छोड़ेंगे। गुरुजी फिर क्या क्या करना, कुछ नहीं, जो तुम उचित समझो करो, जहां जहां समाधि, मैं जब शरीर से प्राण निकलेगा मंदिर में घंटियां अपने आप बजेंगी, दिए अपने आप जल जाएंगे, शंख अपने आप बजेगा। गुरुजी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गांव को सूचना दूं, क्यों, ये इतना दिव्य, आपका देह से प्राण निकल के परम तत्व में प्रवेश करेगा, उसकी खुशी है, मैं क्यों अकेला, सारा गांव दिखाना चाहिए। ठीक है बोल दो, चलो। और रात जाके सारे गांव में घर घर बोल के आ गया, ओ अभिजात मुहूर्त में 12:39 में गुरुजी प्राण छोड़ेंगे और परम तत्व में उनके तल्लीन हो जाएंगे, घंटियां अपने आप बजेंगी, दिए अपने आप जल जाएंगे, शंख अपने आप बजेगा, आइए। वो पूरा गांव आ गया, 11 बजे से ये लोग जमा हो गए, जगह नहीं मिलेगी, 12 बज गया, 12:15, गुरुजी हैं ब्रह्म मुहूर्त में आके बैठे थे ध्यान में, भगवान के मंदिर के ठीक सामने ऐसे बैठे, जैसे यहां ठाकुर जी है यहां कोई बैठ जाए सीधा,
बैठ गए ऐसे आंख बंद करके, सवा बारह, बारह बीस, बारह तीस, बारह पैंतीस, अब एक एक मिनट डाउन काउंट हो रहे हैं, कैसे है, छत्तीस, सड़तीस, अड़तीस, उनतालीस, चालीस, पैंतालीस, कुछ भी नहीं हुआ, अरे एक बज गया, डेढ़ बज गया, अब लोग पटर पटर बात करने लगे, ऐसा जैसा मूर्ख चेला, ऐसे में ऐसे गुरु खामो खाम को यहां दो घंटा धूप में खड़ा कर दिया। चेले को बड़ा विश्वास था, बहुत विश्वास, मेरे गुरु जी कहे तो कुछ मिथ्या नहीं होता है। जब दो बज गए तो जाकर के गुरु जी का शरीर को थोड़ा हटाया, खुद बैठ गया उधर, ऐसा करके ठाकुर जी को, भगवान को देखा, केवल भगवान को देखता है, देखा जैसे यहां ठाकुर जी के साथ में एक खिड़की भी है, वहां भी एक गवाक्ष था, उसमें पेड़ की डाली है, हवा से झूलती थी, उसमें बहुत पका अमरूद लगा हुआ था। जब ठाकुर जी को देखते हो, बीच बीच में डाली भी झूलती है और अमरूद भी झूलता है, उस अमरूद में गया, चेला उठा है, उठ करके लाठी लेके जोर से मारा, अमरूद गिर गया, गिरने के साथ में घंटी बज गई, शंख भी बज गया, दिए भी जल गए। मृत्यु के पर्यंत कितनी ही बड़ी अवस्था होने के बाद भी अंत क्षण में हमारी वृत्ति कैसी रहेगी, बहुत मुश्किल बात है। एक बड़े संत थे, वो इतने ऊंची अवस्था के संत, 100 साल उनको पूरा होने वाला है, अपने शिष्यों से कहा, मेरी इच्छा है काशी जाएंगे, मणिकर्णिका घाट पर जाकर के स्नान करेंगे, फिर वहां प्राण त्याग करेंगे, तो मेरे को उधर ले चलो। और गुरुजी 100 साल के एक पालकी बनाया, शिष्यों ने उठाया, चल दिए, जा तो रहे हैं, अभी रास्ते में एक मौका ऐसा आ गया, पीने का पानी बिल्कुल साथ में नहीं, पूरा पानी हो गया, गुरु तड़प रहे, पानी 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 पानी, तड़प रहे गुरु। शिष्यों ने उधर रखा है पालकी को, दो चेले वहां रहे, बाकी चेले इधर उधर गए, दूर तक रेगिस्तान, एक को पेड़ भी नहीं है, पानी कहां मिलेगा। एक चेला है, उसने देखा एक छोटा सा झोपड़ी है, उसमें दस्तक दे दिए, भाई अंदर कोई है क्या, एक आदमी है आधा कपड़ा पहन के बाहर आ गया, महाराज आप, ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी को तिलक वाला, छाप वाला, माला वाला देकर के, महाराज कैसे हो गए, हमारे गुरु हैं, उनको लेकर के हम काशी जा रहे हैं, पानी के बिना तड़प रहे हैं, वो 100 साल के आए हुए, उनकी इच्छा है काशी में जाकर के देह छोड़े, आपके पास जल मिलेगा, हाँ कल तो मैंने नया मटका लाया हूं, दो धा करके पूरा भरा हूं, यहां आपको जल्दी जल नहीं मिलेगा, 3-4 किलोमीटर दूर गांव वहां मिलेगा, आप इसको ले लो, मैं दूसरा ले आऊंगा। तो उसने घड़ा जो था वो पूरा है छोटा घड़ा, वो इनके हाथ में दे दिया, फिर देते देते बोला, मुझको माफ करना, ये ब्राह्मण लोग है ना, कब श्राप दे दे भरोसा नहीं, इसलिए मैं पहले आपसे माफी मांग लेता हूं, देखिए मेरा पानी आप पी तो सकते हो ना, अरे तुम इंसान हो, गुरु पानी के लिए तड़प रहे हैं, पानी को क्या मुश्किल क्या है पानी में, नहीं नहीं मेरा काम जो है ना वो ठीक नहीं है, क्या काम क्या है, जो पशु मर जाते हैं उनको मैं खींच के लाता हूं, फिर उनके चमड़े को निकालता हूं, उनको सुखाता हूं, सुख जाने पर उसको बिक्री करता हूं, अरे छोड़ वो अलग है ये अलग है, वो तुम्हारी जीविका है, इसी से क्या संबंध है, गुरु के प्राण की रक्षा का प्रश्न है, धन्यवाद बेटे, तेरा मंगल हो, तेरा शुभ हो, तेरा कल्याण हो, आशीर्वाद के लिए आया, गुरु के पास में आ गया, गुरु घड़ा पकड़ के ठप 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 पानी पिए, चिरंजीव भाव, आयुष्मान भाव, सुमंगल भाव, कितने आशीर्वाद दे दिए। जब थोड़ी जान में जान आ गई, बोले बहुत देर लग गई, कितने दूर से लाया, कोई गांव है क्या उधर, नहीं गुरुजी गांव नहीं है, वो एक झोपड़ी है, ओ जब गांव नहीं है तो झोपड़ी में अकेला आदमी, कोई बहुत बड़े तपस्वी महात्मा होंगे, नहीं गुरुजी तपस्वी महात्मा नहीं है, एकाकी एक व्यक्ति रहता है, अच्छा ये अकेला गांव के बिना क्यों रहता है इधर, गुरुजी आप चलिए उठो, ए भाई उठाओ, नहीं 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 नहीं, देखो मेरे को किसी ने जीवन दान दिया है, उसके बारे में जानना तो जरूरी होता है, गुरुजी चलो चलते हैं, नहीं वो अकेला रह के क्या करता है इधर, गांव नहीं है, लोग बाग भी नहीं है, वो मुनि भी नहीं है, तपस्वी नहीं है,
गुरुजी देखे रोटला थी काम राखू तप तप थी नहीं चलो नहीं बताओ एक राजा के हट एक स्त्री के हट एक बच्चों के हट सबसे बड़ा है साधु का हट साधु का हट सबसे बड़ा मुश्किल है क्यों अपने आप को समझता है न मैं तो क्या बोलना है अभी बड़ा मुश्किल काम है बताओ महाराज जी वो गांव में जो पशु मरते हैं उनको खींच के लाता है चमड़ा निकालता है सुखाता है बिक्री करता है अजीब है तूने क्या किया भ्रष्ट हाय हाय राम राम चमार चमार का पानी चमार ऐसे चमार चमार बोल के गुरु मर गए अगले जन्म में चमार हो गए क्या करेंगे आगे कहानी अभी नहीं बताएंगे वो अलग है चीज किंतु क्या कहते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम निशानवलोकयन क्या कहते हैं हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानजी महाराज MYOB माइंड योर ओन बिजनेस तुम्हारा कर्तव्य क्या है पानी प्यास लगी थी पी ले पानी ठंडा था पानी साफ था पानी शुद्ध था पानी पवित्र था पी लो अभी वो चमार से लाया है जो मशक में आता है वो भी चमड़े में आता है ना जो लोग मशक में पानी लाते हैं वो भी तो चमड़े में लाते हैं किंतु क्या किया जाए गुरु मर गए बताओ क्या कहते हैं कि जब ध्यान के लिए बैठते हो तो इधर उधर मत देखो माने शरीर से तो नहीं देखो मन से भी नहीं ये बहुत जरूरी बात है लोग क्या है कि शरीर तो स्थिर रहता है मन पता नहीं कहां कहां एफिल टावर में घूमता रहता है मन कहां कहां घूमेगा नहीं इसलिए कहते हैं कि मन को क्या कह रहा है संप्रेक्ष नासिकाग्रम या नक रखना अगर पूरी आंखें खोल के रखेंगे दुनिया सब दिखेगी दुनिया ही हमारे जीवन के सुख और दुख का एक प्रथम कारण है उनको देखकर खुशी होते हैं देखकर दुखी होते हैं खुशी होना भी उचित नहीं है क्योंकि आपके जीवन में कोई नई विचारधारा को जागृत करेगा दुखी होना तो उचित है ही नहीं है तो क्या कहा उन्होंने आंख बंद करके भी नहीं बैठना जब आंख बंद करके बैठेंगे तब दुनिया भर के जो विचार नहीं किए थे वो भी आएंगे नासिक आग्रह यहां पर रखो अगर आप बैठ करके यहां आंख रखते हो तो आपके आगे 3 फीट से ज्यादा आपको जगह नहीं दिखेगी खड़े होकर के रहो तो 4-5 फीट तक दिखेगी जब ऐसे करके बैठते हो केवल नाक के टिप को देखते हो 5-10 मिनट देखकर रहना यहां पर क्या होगा धीरे धीरे सामने सब अंधेरा हो जाएगा सामने क्या हो जाएगा सब जैसे कि चीज वस्तुएं हवा में बस एकदम ऐसे बाष्पीभवन होता है ऐसे एकदम रूप हो जाएंगे केवल प्रकाश ही रह जाएगा केवल यही देखते रहना कहीं नहीं देखना कृष्ण ने बड़ा सिस्टमेटिक बड़ा साइंटिफिक और बड़ा जिसको कहते हैं कि औपचारिक और जो सरल समझ में आए इसी ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे कृष्ण वास्तव में श्रेष्ठ गुरु हैं कहते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम सब ये केवल नासिका के यहां देखना पूरी आंख खुली नहीं रखना बोल सकते थे आंख बंद कर देना ये भी बोल सकते थे नहीं नासाग्रह दृष्टि इसलिए कहा हमारे 15वां अध्याय में उत्क्रान मंत्र स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष बाहर बहुत देखते हैं थोड़ा अंदर देखने का अभ्यास करो बाहर लोगों से बहुत मिलते हो थोड़ा अपने से मिलने की कोशिश करो कहां कहां जाओगे किस किस को मिलेंगे कब तक मिलते रहोगे कभी सोचो अपने से मिलने का आपको टाइम है क्या कभी सोचो अपने आप को कि मुझे अपॉइंटमेंट विद द सेल्फ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है वकील की है बिजनेसमैन की है मंत्रियों की है क्या क्या है ट्रस्टियों की है अपने से अपॉइंटमेंट कब है अपॉइंटमेंट विद द सेल्फ अपने से रोज एक ध्यान बैठ करके भीतर में जाकर आंख है खुली भी नहीं बंद भी नहीं नासाग्रह दृष्टि दिशावलोकन इधर उधर देखना नहीं है प्रशांत आत्मा का है शांत है उद्वेग नहीं है आप समझते हैं कि मैं किसी से लड़ाई करता हूं समझे छू है क्या समझता तू मेरा ध्यान का टाइम है अभी ध्यान करने दे ध्यान के बाद मैं तुझे देख लूंगा वो ऐसे करके बैठेगा तो क्या ध्यान होगा तू मेरे प्यारे वो जगह में जाके बैठ जाएगा कि तू आंख खुली रहे कि बंद, लाठी लेके उसी से लड़ता रहेगा, नहीं होता है ना। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा जो समुद्र है वो किनारे पर छिछला रहता है, अंदर बीच में चले जाओ बिल्कुल शांत होता है, प्रशांत गाढ़, क्योंकि गहराई होती है, प्रशांत होना चाहिए। आत्मा में कोई चंचलता नहीं। आत्मा का अर्थ यहां का भी द्रव्य है, सात तत्व में वैशेषिक क्या बोलते हैं ऐसा, तो जीव है उसमें छटपट आता नहीं, इच्छाएं नहीं, तृष्णाएं नहीं, कामनाएं नहीं, वासनाएं नहीं, कुछ भी नहीं, प्रशांत आत्मा एकदम शांत। कैसे जब हवा नहीं चलती है तो दिया कैसे स्थिर रहता है, हवा नहीं चलने पर तालाब कैसे शांत रहता है, ऐसे ही कोई इंद्रियों में चित्त नहीं है, चित्त ही नहीं, मन ही नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, केवल आनंद, एकदम आनंद। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतित, कोई विचार नहीं। कैसे हो सकता है? प्रशांत आत्मा विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थित। ब्रह्मचारी का मतलब है कामुकता ही केवल नहीं है, ब्रह्मम चरति यह, जो ब्रह्म का ही चिंतन करता है। आंखों से गलत देखना नहीं है, कान से गलत सुनना नहीं है, मुंह से गलत बोलना नहीं, गलत खाना भी नहीं, हाथ से गलत चीज को छूना नहीं, मन में कोई भी दुर्भाव नहीं रखना, नहीं, शांत रहना, आनंद में रहना, प्रसन्न रहना। विगत भी ओ मुक्त, कैसे मुक्त है? बाहर से मुक्त है, अंदर में आ गया, बस एक बार आ गया फिर बाहर जाने का नाम नहीं। हाँ, जिसने एक बार आनंदोहम की अनुभूति कर ली है, हाँ, तत्वमसी को देख लिया है, अहम ब्रह्मास्मि को जान लिया है, उसको फिर बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वो नचिकेता के माफिक, नचिकेता का ओ यम ने क्या बोल दिया है, इमा रामा सरथा सतुरिया न इदृशा लंबनीय विद्रुमने ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान कामा संगत प्रार्थयस्व। ये तू क्यों पूछ रहा है? नचिकेता बोलता है मुझे बताओ ये मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है। अरे यम ने कहा 6 साल का बेटा है, तुझे आत्मा से क्या संबंध है? ये स्वर्ग की अप्सराएं आएंगी तुम्हारे लिए, स्वर्ग का नृत्य आएगा, क्या क्या चाहिए बोल। आजकल का लड़का क्या बोलेगा? बोलेगा कि मेरा हाथ शाहरुख खान से मिला दो, मेरी अमिताभ बच्चन से फोटो खिंचवा दो, और क्या बोलेगा? क्या कहते, मेरे को 10-20 करोड़ रुपया दे दो, और क्या बोलेगा? मेरी 2-4 कोठियां हो जाए बंबई में, एक नेपेंसी में हो जाए, एक मरीन लाइन्स में हो जाए, एक ऐसे ऐसे क्या पूछेंगे आप? हमारे एक बैंक में अकाउंट स्विट्जरलैंड में करा दो। वो एक बहुत बड़े एक राजा रहे, उनके आंगन में देखा एक भिखारी बैठा हुआ है चुपचाप, तो सवेरे से कुछ कुछ कर रहा है, तो खिड़की से गवाह से रहे कि वो आंगन में भिखारी कर क्या रहा है। तो राजा ने उसको बुलाया, महल के अंदर बैठाया एक अच्छी कुर्सी में। देखो मैं सवेरे से देख रहा हूं बेटे तू कुछ कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? जो चाहिए सो मांग। वो क्या मांगा पता है? बोला ये मेरा भिक्षा लेने का जो पात्र है ना वो टूट गया है, तो फिर को नया दिला दो। राजा ने सिर फोड़ लिया, क्या है मांग रहा है? वो कुछ भी मांग सकता था, ये तुम्हारा राज्य मुझको दे दो मांग सकता था, अपने अच्छे महल मांग सकता था, बोलता है मेरा ये पात्र टूट गया है। हमारी ये अवस्था ऐसी है, हमें पता ही नहीं है कि ईश्वर कभी आ जाएंगे तो मांगना क्या है, हमारी अवस्था क्या है, हम लोभ में रहते हैं। नहीं, नचिकेता कहते हैं नहीं चाहिए भाई, वो तवैव वाहा तव नृत्य गीते, अरे तुम्हारा संगीत तुम्हारा नृत्य रखो भाई, तुमको मुझको नहीं चाहिए, तुमको कितना चाहिए आयुष्य उतना ले लो। नचिकेता फिर बोलता है इतने आयुष्य के बाद मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तो बताओ ना उसके बाद क्या होता है? क्या हमारे मन में भी ऐसी क्या कहा है कि विगत भी ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित, ब्रह्मचारी बने उनका केवल ब्रह्मम चरति, जो केवल ब्रह्म का ही चिंतन करते, ब्रह्म से बिल्कुल नीचे नहीं, ब्रह्म को छोड़ के कुछ नहीं चाहिए ना। मुझको क्या चाहिए? एक तू एक तू एक मांगू, आपको छोड़कर कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बहुत बढ़िया है। हे कोई राणावत नाम की एक माता है, उन्होंने मेरा चरित लिखा है, मैं रात रात पढ़ता हूं, बड़ा ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई हाथ पकड़ के घूम रही है। और वो राणा माता जी ने भी इतना सुंदर लिखा है, जैसे कि वो मीराबाई के साथ में पैदा हुई, मीराबाई के साथ साथ में अंत काल तक घूमती रही, इतना बढ़िया लिखा है, अद्भुत लिखा है। जैसे कि मीराबाई द्वारका में गई तो वैदर्भी जी ने उनको स्वागत किया। वैदर्भी जी तो किसी कहीं को उल्लेख नहीं करते। वैदर्भी जी मैंने कौन है? मैंने रुक्मिणी जी, विदर्भ की कन्या थी ना, वैदर्भी जी ने उनका स्वागत किया, रुक्मिणी जी ने स्वागत किया, तमाम सत्या से लक्ष्मण से सबसे मिलाया, और फिर भगवान आए तो उनको मिलाए। मीरा ऐसे खड़ी रही, अरे इतना देर तक मेरे को छोड़ा नहीं। ऐसे वो समुद्र किनारे बैठ करके सपना देख रही है कि नई पुरानी, वो पुरानी द्वारका में चली गई, इतना कुछ अद्भुत। ए इतना भाव कैसे होता है? चलो उसको छोड़ के कुछ नहीं देखे। आपसे क्या कहा? सुई के छेद में डोरा डालने के लिए वो डोरा का एक फाइबर दाएं बाएं रहेगा, नहीं जाएगा, उसको ऐसा करके एकाग्र करना पड़ता है। विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी मैंने काम वासना को तो कोई है ही नहीं है, काम वासना नहीं है, खाने की भी वासना नहीं हो, पीने की भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, मन ही नहीं, जहां पर मनोनाश नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं है, वासना क्षय नहीं है तब तक मनोनाश नहीं है, मनोनाश नहीं है तब तक मोक्ष नहीं है, कोई नहीं चिंतन, एक जहां बैठा होती तेही बैठो। वो हाउ गॉड कीप्स यू सो यू स्टे, सिंग एंड प्रे नाइट एंड डे, विदाउट सीइंग हिम डू नॉट पास द वे। वो एक को चिंतन, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं। रास्ते में यहां से चल करके जाए बाबुलनाथ तो क्या करना है? मुझे बाबुलनाथ ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है, ऊपर जाने की जरूरत क्या है? जब भगवान को देखो लिपमेन को, समझो यही मेरा गिरधर गोपाल है। राजू भाई को देखो, यही मेरा गिरधर गोपाल है। आप लोग बोलते हैं पंचम पीठाधीश्वर बोलते हैं, मैं बोलता हूं दिनकर नारायण की जय। क्या तकलीफ क्या है भाई? हाँ क्या तकलीफ क्या है? हमारे भीतर की चेतना है सर्वत्र परमात्मा को देखने के लिए। तो ये कहते हैं विगत अभी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, एकमात्र परम तत्व के चिंतन को छोड़ के और चिंतन नहीं। मन संयम्य मच्चित्त, ये बड़ी बड़ी कड़क बात बोल दी, मन संयम, मन को संयम करो, मत चित्त मेरे में चित्त को लगाओ। सारी समस्या की जड़ तो यही है। ये डॉक्टर बैठे इधर में, बड़े बड़े डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, क्या निकालते हैं? सेरिब्रम को निकाल सकते हैं, सेरिब्रम को भी, हार्ट को, लीवर को, किडनी को, पेनक्रियास को, इंटेस्टाइन को, ब्लैडर को, सबको निकाल के दिखाया जा सकता है। मेरे प्यारे मन तो दिखाओ किधर है शरीर में, मन तो कहीं नहीं, पर सारा समस्या का जड़ जे वो तो मन है। माइंड इज द प्रिंसिपल कॉज, मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव रात्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। आपके दोस्तों में दुश्मन तो क्यों? विचारों की वजह से। सोच बदलो, एक परमात्मा छोड़ के और कोई सोच नहीं। ब्रह्मचारी हृदय मन संयम है मत चित्त युक्त आसीत मत पर, बहुत जरूर। तीन बात बहुत कड़क बोल दी है, तुम क्या कहो? मन को संयम करो, मन को संयम करो, मत चित्त चित्त को भी मुझ में लगाओ, और युक्त आसीत मन और चित्त दोनों में आकर के मत पर मेरे परायण हो जाओ। हम लोग कितना अध्ययन करते हैं मुझे पता नहीं। श्रीमद भगवद गीता का जो 12वां अध्याय है वो भक्ति योग है, किंतु भक्तियों की जो चाबी है वो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में है। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम इति पांडव। वो भक्ति योग है, वो क्या है भक्ति योग? कौन भक्त है? मत कर्म कृत जो मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म कृत, मत परमो जो मेरे में परायण होकर करता है, मत परमो, मत भक्त जो पूरी भक्ति से करता है, संग वर्जित जिसके जीवन में कोई कुसंग नहीं है। तजो मन हरि विमुखन को संग जाके संगते कुमति उपजे पड़त भजन में भंग, काग को कहा कपूर चुगाए स्वान नाए गंग, खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण अंग। जो जिसके संग में आपकी मति है वो प्रभु से विचलित होती, उनकी संग छोड़ो ना, नहीं चाहिए कि तुम अपने घर में खुशी रहो। नारायण आप आए, धन्यवाद, बड़ी कृपया, जाओ। क्यों? उनकी उपस्थिति मात्र से अगर आपके मन में कोई एक अयोग्य अवांछनीय वातावरण उत्पन्न होता है, क्यों ये महात्मा लोग अपना अपना आसन बिछा करके बैठते हैं, अपना भोजन का काफी लोग कटोरा भी साथ में लेके चलते हैं, अपना चमच साथ में लेके चलते, क्यों? क्योंकि वो अपना जो सत्व है वो अपने सत्व को संभाल के रखना चाहते हैं। काफी महात्मा लोग नहीं पांव छूने देते, क्यों नहीं छूने देते? बोले भाई अंगूठे को स्पर्श करते हो ना, ये अंगूठा क्या होता है, जो सिर है वही अंगूठा है, तो अंगूठे को स्पर्श किया तो हमारी तमाम चेतना लेकर के जाते हो। हाँ, इसलिए महात्मा लोग बोलते भाई दूर से प्रणाम करो, छूना वूना नहीं है, क्यों करते? उचित है ये, हमारी अपनी जो अध्यात्म सत्ता है उसको बिखेरने के लिए कौन लोग, ये भगत लोग ही जिम्मेदार होते हैं। महात्मा जी थोड़े आपके पांव दबा दो, ये सब नाटक है, क्या पाओ दबाना। हाँ, हमारे घर में महात्मा जी भिक्षा ले लो महाराज, ठीक है भिक्षा लो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, किंतु रोज एक भिक्षा के लिए गया करो, रोज। वो किस वासना में खिला रहे आपको पता है क्या? वो कौन खाना बना रहे आपको पता है क्या? कैसी इच्छा से खाना खिला रहे आपको पता है क्या? हाँ, कोई कोई लोग है हमारे जो आश्रम होते हैं ना, या तो जहां जहां पाठशालाएं होती, पाठशालाएं ब्रह्मचारी लोग पढ़ाई करते हैं तो वहां उनको अन्नदान करते हैं, क्यों? मेरी एक जवान बेटी है, हाँ वो मर गई थी, तो उसके पीछे वो एक सेठ है, एक सज्जन ने आकर हमसे कहा, समझी बड़ा मुश्किल है, मैं जब ध्यान करने बैठता हूं ना तो मेरे को सामने एक लाल कपड़ा पहने हुए श्रृंगार की हुई एक जवान लड़की दिखती है। साधु ने बोला, मठ के साधु ने, तो मैंने बोला ऐसे क्यों होता है? महाराज जी आप बहुत ध्यान करते हो, मेरे को बताओ ना। मैंने दूसरे दिन पूछा, अभी? हाँ महाराज, दो दिन से हो रही है। मैं चुप रहा, फिर मैंने कोठारी से कहा, ये भंडारा आज का कौन चला रहे? बोले कि एक सेठ है, उन्होंने दो दिन के लिए पैसा दिया था, 5,000 रुपया भंडारे के लिए। सेठ ने पैसा दिया था, बड़ा कंजूस है वैसे तो, देने वाला नहीं है, मगर सुना है कि उनकी एक जवान बेटी थी 20 साल की, किसी बुड्ढे ने उनको 5,00,000 रुपया दिया तो उन्होंने उसे शादी करा दी। ओ, 5,00,000 रुपया लेकर के 20 साल की बेटी कोई 72 साल के आदमी को शादी करा दी है। अब 5,00,000 रुपया लिया है तो उसमें से वो 5,000 रुपया भंडारे में दे रहा है, तो तुम जो खाओगे खाना उसका, तो फिर खाने के सामने आपको लाल कपड़ा वाली क्यों नहीं दिखेगी? दिखेगी, दिखेगी, वो थोड़ी खुशी होती है। इसलिए क्या कहते हैं, हमारे जीवन में ये संयम कहां से आता है? जैसा अन्न है वैसा मन है भाई, ये अन्न को खाने के लिए भी बहुत जप करना, सवेरे उठ के जप करो, दोपहर को भोजन के पहले 15वें अध्याय का गीताजी का पाठ करो, शाम को फिर जप करो, ताकि अन्न की शुद्धि हो, विचारों की शुद्धि हो। हम कहां कहां साधु लोग खाना खाते, जहां बैठ जाते हैं भोजन कर लेते हैं, किंतु भोजन के पीछे किसका क्या भाव है क्या बताए? अपने अध्यात्म को संभालने के लिए लोग भागे, हर जगह में भोजन नहीं करते, हर जगह में पानी नहीं पीते, क्यों? ये साधना है भाई, अपने आप की साधना है। तो क्या कहा है, मन संयम में, मन क्यों संयम करने के लिए सबसे पहले कहां उठना है, कहां बैठना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सावधान रहना चाहिए। मत चित्त, तो मन के पीछे पीछे चित्त भी ठीक हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अलग नहीं है, वो एक ही है, वो एक ही है। जब विचार आते जाते हैं तो मन है, विचारों का संग्रह होता है वो चित्त है, विचार पर तर्क होता है तो बुद्धि है, विचार पर मैंने कहा हो ठीक, क्या समझते हो, वो अहंकार है, वो एक ही है, चार अलग अलग रूप में है। तो ये बात क्या कहते हैं, तो बड़ा सुंदर कहा, मन संयम में मत चित्त युक्त आसीत, युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होके रहो। ये मेरे परायण बोल करके और किसको परायण छोड़ देना? ओ, एक बहुत फकीर था, दुख में था, लगा कि मैं बादशाह के पास जाकर कुछ मांग लूं। वो बादशाह के पास गया तो बादशाह नमाज पढ़ रहा था, नमाज तो हो गई फिर भी कुछ बड़बड़ा रहा है, फकीर उठ के चला गया। तो राजा को किसने कहा था, एक फकीर आया था, बहुत देर बैठा था, चला गया। अरे बुलाओ भाई, क्यों आया था? बोले मैं कुछ मांगने के लिए आया था। तो फिर क्यों नहीं मांगा? बोले तू खुद ही भिखारी है, किसी से मांग रहा है, मैं तुझसे क्या मांगू, इसे अच्छा है मैं वाया मीडिया नहीं करता हूं, सीधा उसी से मांग लूंगा, मेरे को क्या चाहिए। बहुत जरूरी बात है। मत परा, मेरे परायण। दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है सब है, संसार है, संबंध है, रुचि है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, किंतु एक परमात्मा में श्रद्धा, पूरी निष्ठा उसमें, इतनी पूरी भक्ति, बस खत्म। क्या एक बार भक्ति का स्वाद जिसने चख लिया ना, ओ आपका पतक चलेगा नहीं, आपका हाथ पकड़ के वो चलेंगे। गर्मी लगेगी तो वो आपके ऊपर में छत्र पकड़ के चलेंगे, आपके पांव जल रहे हैं वो खुद जूता बन करके खुद आपको जूता पहना करके जाएगा। ये मैं जो बोल रहा हूं ये कहानियां किससे नहीं है, 68 साल पूरे हो रहे हैं, 43 साल संन्यास के हो जाएंगे, प्रति पल अनुभव करते भगवान कैसे कैसे कौन से रूप में आकर के क्या क्या करता है, कल्पना के बाहर की बात है, क्योंकि उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, किंतु हमारी दृष्टि में खामी, हम उसको नहीं देख पाते। उसके बाद में पता होता है, महसूस होता है, वो छलिया छल करके गया। वो सूरदास जी महाराज है ना, वो रात में सत्संग करके आ रहे हैं, सत्संग करके आ रहे हैं, लाठी ठप ठप करके जा रहे हैं, कृष्ण भगवान ने देख लिया, अरे उनका अंधा कुआं आ रहा है, कुएं में मुंडेर नहीं है, ये बुड्ढा गिरेगा, तो आकर के उनके लाठी को पकड़ लिया, बाबा जय श्री कृष्ण। तो बोले बेटे इतनी रात गए तुम कौन हो, बाबा मैं तो आपके सत्संग को रोज सुनने आता हूं। अरे इतनी रात गए सत्संग में कहां जाता है, फिर मैं अपने घर जाता हूं। तेरा नाम क्या है, कुछ भी कह लो बाबा, जिसको जो मर्जी सब अपने अपने नाम से कहते हैं। लाठी उठा के चल रहा है, वो कुआं में नहीं गिरेगा, उसको घुमा के लेके जा रहा है। सूरदास जी सोचते हैं इतना मीठे बोलने वाला मेरा घनश्याम ही होगा। उन्होंने एक हाथ से लाठी पकड़ ली, दूसरे हाथ को धीरे धीरे आगे सरकाने लगे। वो बाल कन्हैया आगे चल रहे हैं और ये हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, जब कन्हैया का हाथ पकड़ने आएगी बस छुड़ा कर चला गए। अब सूरदास बोल रहे हैं बाह छुड़ा कर जाते हो निर्बल जान के मोही, अरे हृदय छुड़ा के जाओ तो सबल जाए, तुम हृदय को तो छुड़ा के जाओ नहीं चाहते, अपने आप को क्या कहा है, युक्त जोड़ देना, आसीत रहो मत पर केवल मेरे पराए, मच्चित क्या बोला है, मन संयम में, मन को तो संयम करना पड़ेगा, चित्त मेरे में जोड़ना पड़ेगा और मुझ में ही एक आप परायण हो जाओ। देखिए ध्यान है वो करने की बात नहीं है, ध्यान हो जाता है, उसकी दिशा में हमारा चिंतन होना चाहिए। 8:30 बजे तक सत्संग होना चाहिए, मैंने आज इतवार है, हमारा निर्वाण शतक भी होगा, 12वां 15वां अध्याय भी होगा, ताकि 8:30 बजे तक पूरा हो। यहां वाणी को विराम करते हैं और हमें आदरणीय मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मदनलाल जी दालमिया जी और कार्यक्रम के जो संचालक हैं श्रद्धेय गिरीश भाई ड्रेसवाला जी, दोनों ने पत्र लिख करके दिया है, अगले साल भी आप 16 मार्च से 31 मार्च तक उपस्थित हो। इंशाल्लाह भगवान चाहे हम भी रहें आप भी रहें, तो फिर 6वें अध्याय में यहीं से मिलेंगे। तब तक भगवान ने क्या कहा है, युक्त आसीत मत परा, मुझसे जुड़े रहो। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। परमात्मा आपके भीतर जो बैठे हुए हैं उनको भी हमारा प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण,
नारायण 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 नारायण। आइए हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्वामी जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। स्वामी जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतने सरल सहज मिलनसार हंसमुख संत दुर्लभ हैं। अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की थी कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, परिभाषा है, उसके क्या लक्षण है, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, ये जिज्ञासा अर्जुन ने भगवान से की थी और भगवान ने दूसरे अध्याय में 55 श्लोक से लेकर 61 श्लोक तक 7 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है भगवान ने बताया था। और सही माने आप देखें तो स्थित जो भगवान लक्षण बताए थे स्थित प्रज्ञ मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है, साक्षात स्थित प्रज्ञ हमारे सामने बैठे हैं, हम उनका दर्शन कर रहे हैं। गीता में भगवान ने 16वें अध्याय में देवी संपत्ति के गुण बताए थे कि देवी संपदा ये है, एक व्यक्ति में सारे गुण मिलने असंभव है, लेकिन स्वामी जी में देवी संपदा के सारे गुण विद्यमान है। स्वामी जी ने 6वें अध्याय की जो कि आत्मसंयम योग है उसकी गहराई में जाकर एक एक श्लोक को स्वामी जी ने एक ही दिन में लिया है और कितने अपने अनुभव स्वामी जी ने बताए हैं और उन अनुभवों के आधार पर स्वामी जी ने जो बताया है उसको हमें जीवन में धारण करना है, उसका आचरण करना है, तभी स्वामी जी ने जो कुछ बताया उसकी सार्थकता हमारे जीवन में होगी। मैं और अधिक कुछ नहीं कहकर इतना ही कहूंगा कि स्वामी जी आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और आपकी कृपा से हमारे जो जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति आत्म कल्याण हम प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी ओर से पुनः मैं स्वामी जी के साथ जुड़ने में प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबका कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। जय श्री कृष्ण।